ओम शांति। एक बार पुनः आप सबका इस संध्याकालीन सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि अनिल भाई ने बहुत विस्तार से बताया कि हम सब बहुत बहुत भाग्यवान हैं जो हमारे मध्य ऐसी आत्मा विराजमान है जिसके अंदर साकार बाबा और मम्मा दोनों की विशेषताएं, दोनों के साथ का अनुभव मिश्रण है। हम तो अनेक वर्षों से दीदी को देख रहे हैं, दीदी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो कभी कभी बाबा का रूप दिखाई देता है और कभी मम्मा का, क्योंकि ये ऐसी आत्मा है जिन्होंने अपने आंखों से बाबा और मम्मा को देखा, पालना लिए, और इनके पदचिन्हों को देखकर हमें बाबा और मम्मा का आभास होता है। ऐसे बहुत सारे भाई बहने होंगे जिन लोगों ने साकार बाबा मम्मा को नहीं देखा, लेकिन जब हम दादियों को और दीदियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने बाबा मम्मा को देख लिया। तो जैसे कि दीदी तो बहुत सारी विशेषताओं की खान है, आदि रत्नों में से एक है, और स्वयं जिनकी बखान महिमा भगवान किया करते हैं। अनेक बार आप सबने साकार मुरली में सुना होगा, बाबा कभी दीदी को निर्मल आश्रम, कभी निर्मला बेटी, कभी निर्मल फूल कहते हैं, जिनका अंदर बाहर बहुत साफ है। दीदी की दो विशेषता मैं छोटी छोटी सुना देता हूं जो हम सबको बहुत प्रेरित करता है। एक, दीदी को कभी भी फोन करो, इतना विस्तार का कार्यभार करते भी हमेशा दीदी अवेलेबल रहती है, फोन उठाती है, और यदा कदा कभी नहीं उठा पाई तो हम जैसे अनेक छोटे लोगों को भी कॉल बैक करती है। ये नहीं कि फोन कर लिया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, या वापस कर लेगा, ऐसा नहीं, दीदी कॉल बैक करती है। दूसरी एक बहुत बड़ी, लेकिन हमें उसे छोटी विशेषता समझ सकते हैं, भोजन कभी भी वेस्ट नहीं करती। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, सुबह नाश्ता लेकर के जाते हैं दीदी के लिए, अगर वो बच गया तो दोपहर को खाती है, दोपहर को बच गया तो शाम को खाती है, एक कना दाना भी दीदी वेस्ट नहीं करती। तो ये दीदी की बहुत सुंदर विशेषताओं में से एक है। दीदी की वैसे स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, मैं सुबह भी गया था मिलने के लिए, 11 बजे भी गया, लेकिन फिर भी हम सब से कितना प्यार है, आप सब से कितना स्नेह है, अपना कीमती समय निकाल करके, अपने शरीर को भी ध्यान न रखते हुए हम सब के लिए अपना समय निकाल करके आई, इसलिए एक बार पुनः आप सब की तरफ से, बाप दादा की तरफ से दीदी का बहुत बहुत अभिवादन। दीदी से वैसे तो हमें बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा बनी रहती है, लेकिन आज हम कुछ दीदी के व्यक्तिगत अनुभव, और चूंकि जून माह चल रहा है तो सबके मन में जिज्ञासा रहती है, मम्मा के साथ का अनुभव, मम्मा के बारे में जानने की, मम्मा के चरित्र और चित्र को दीदी के मुख से सुनने की। तो मम्मा से संबंधित भी कुछ बातें हम दीदी से सुनेंगे, और कुछ भाई बहनों के कुछ प्रश्न, व्यक्तिगत प्रश्न भी कुछ दिए हुए थे, वो सब भी लेंगे, और लास्ट में समय रहेगा तो आप सब भी अपने कुछ प्रश्न शेयर कर सकते हैं। तो दीदी, आपसे पहला व्यक्तिगत प्रश्न ही है कि आपको ईश्वरीय ज्ञान कैसे मिला, और बाबा की कौन सी बात ऐसी प्रिय लगी जिससे आपने अपना जीवन समर्पित कर दिए।
ओम शांति। बम्बई में मम्मा थी और वो हर संडे शाम को वाटरलू मेंशन में पब्लिक प्रोग्राम करते थे, उषा रमेश वाली उषा मेरे साथ पढ़ती थी। तो जब उसको ज्ञान मिला तो उसने हमें निमंत्रण दिया कि मम्मा के प्रवचन में आओ। तो एक संडे दिसंबर 62 में मैं सेंटर पर गई। तो उस समय हम चार पांच बहनें जल्दी पहुंची थी, तो निर्मल शांता दादी आपस में हमारे से बैठकर ज्ञान चर्चा करती थी कि कैसे पांच विकारों को जीतने से हम जगत जीत बनते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छी लग गई। संस्था का जो लक्ष्य है पवित्र बनना, क्योंकि बचपन से हमको शादी का विचार नहीं था, और 17 साल की जब मैं हुई मैट्रिक पास की तो हमारे लौकिक माँ बाप ने लड़का ढूंढना शुरू किया। तो मैंने कहा उन्हों को, या तो मैं मेडिसिन पढ़ूंगी या तो शादी करूंगी, क्योंकि शादी करने से फिर नेचुरली है संसार और व्यवहार वो सबकी जिम्मेवारी आ जाती है। तो हमारे पिताजी ने कहा ठीक है तुम पढ़ो भले। तो इसलिए एक तो हमने पवित्रता की बात अच्छी लगी, दूसरा मेरा लक्ष्य था कि मेडिकल स्टडी करके मुझे गांव की सेवा करनी है, क्योंकि मुंबई में तो बहुत डॉक्टर हैं। तो इसलिए जब हमने देखा कि ये मेडिटेशन से मनुष्यों की मानसिक हालत बहुत सुधर जाती है, क्योंकि आजकल बीमारियों का कारण यही है स्ट्रेस, टेंशन, चिंता आदि। तो इसलिए मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, हम तन के साथ मन की भी दवाई कर सकती है। तो इसलिए फिर मैंने ये मेडिटेशन का अभ्यास भी चालू रखा, और मेडिटेशन के अलावा मेडिसिन की भी हमने चालू रखी।
जी दीदी, दीदी लौकिक में बहुत बड़े परिवार की है, आप सबको ज्ञात हो कि दीदी के जो लौकिक पिताजी वो फिल्म के प्रोड्यूसर थे। और बीच में मैं एक और बात आप सबको सुना देना चाहता हूँ, हम सबके लिए गर्व की बात है कि साकार बाबा के समय यज्ञ में मधुवन के अलावा पहला मकान दीदी के लौकिक पिताजी ने बाबा को बना करके दिया था। ये यज्ञ में पहला मकान था जो अपना निजी था, उसके पीछे भी लंबी हिस्ट्री है दीदी कैसे उस मकान बनाने में अपने पिताजी को प्रेरित किए। दीदी दूसरा प्रश्न है, क्योंकि जून माह हम सब मम्मा को स्मरण करते हैं, तो मम्मा से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई, और मम्मा से प्रथम बार मिलने का अनुभव हम सब सुनना चाहते हैं।
तो मम्मा का प्रवचन तो पहले दिन सुना, पर जब मैंने कोर्स पूरा किया तो उषा बहन ने मुझे मम्मा से मिलाया और मम्मा ने मुझे पर्सनल मुलाकात में पूछा, सब ठीक है? हमने कहा मम्मा मेरी टीचर जा रही है, क्योंकि जिसने मुझे कोर्स कराया कुंज दादी, वो पटना से आई थी बम्बई। उन दिनों में मम्मा बाबा बम्बई आते थे तो सीनियर दादियों को बुलाते थे कि आओ बम्बई भी देखो और रिफ्रेश भी होके जाओ। तो मम्मा कहे कोई बात नहीं, निर्मल शांता दादी है ना, वो तुम्हारी संभाल पालना करेंगे। फिर मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा कृष्ण का जन्म भी पहला जन्म सतो प्रधान था, क्राइस्ट का भी पहला जन्म सतो प्रधान था, तो उसमें क्या फर्क? फिर मम्मा ने समझाया, क्राइस्ट की सतो प्रधानता द्वापर की थी, जन्म से नहीं था, परंतु कृष्ण जन्म से सतो प्रधान था। तो ये थी प्रथम मुलाकात। फिर दोबारा उषा बहन ने अपने घर, मम्मा रहती थी, तो 3-4 मास के बाद हमको उनके पास भोजन के लिए बुलाया। तो भोजन के टाइम मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा मेरा विचार नहीं है कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, इसी सेवा में लग जाऊं। तो मम्मा कहे, जब तुम ब्रह्मा बाबा से मिलो तब ये प्रश्न करना। तो मम्मा ऐसे मेजर निर्णय खुद नहीं करती थी, ब्रह्मा बाबा से कराती थी।
जी 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 जी, बहुत सुंदर दीदी, आपने वो सब सीन हम सबके सामने प्रत्यक्ष कर दिया, किस तरह से मम्मा से आपकी मुलाकात हुई। दीदी एक प्रश्न जानने की जिज्ञासा है हम सब, चूंकि साकार बाबा मम्मा को तो नहीं देख पाए, जैसे वर्तमान समय गुरुवार के दिन भोग लगता है, दीदियां भोग लगाती है, मम्मा बाबा के समय क्या होता था? क्या बाबा मम्मा स्वयं भोग लगाते थे? आखिर उस समय का कैसा सीन होता था दीदी?
हाँ, उस समय मम्मा बाबा खुद ही भोग लगाते थे, मम्मा होती थी तो मम्मा साथ में बैठती थी, नहीं तो ब्रह्मा बाबा अकेले बैठते थे, और वो भोग लगता था 12 बजे, क्योंकि माताएं सेंटरों पर सवेरे नहीं पहुंच पाती थी
जी।
तो सब सेंटरों पर 12 बजे भोग लगता था, मधुबन में भी 12 बजे भोग लगता था। और उस समय तो संदेशी की बात नहीं थी, संदेशी का पाठ या साक्षात्कार पाठ शुरू शुरू में था, जबकि संदेशियां ध्यान में जाती थी और भोग लगाती थी और कुछ संदेश ले आती थी।
जी 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 जी, तो ये सब हम सबको ज्ञात हो कि जैसे अभी भोग लगता है इसी तरह से बाबा मम्मा स्वयं भी बीच में बैठ करके भोग लगाया करते थे। और दोपहर का ये नई जानकारी दीदी दे रही है कि दोपहर के समय मधुबन में भी दीदी दोपहर को ही भोग लगता था, मधुबन में भी दोपहर को ही भोग लगता था उन दिनों। जी दीदी, दीदी एक प्रश्न और है, जैसे साकार बाबा के समय मम्मा सेवा केंद्र पर भी जाती थी, क्या ऐसे सेवा केंद्रों पर भी जाती थी जहां कुछ विघ्न हो, समस्या हो, उसका निवारण करने के लिए बाबा मम्मा को भेजते थे?
दोनों काम होता था। एक तो रिफ्रेशमेंट करने जाते थे
जी,
जैसे मुंबई में आई 9 मास रही तो उस समय उन्होंने लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाने में आर्टिस्ट को मदद किया
जी।
मम्मा कभी ध्यान में नहीं जाते थे, परंतु उनकी दिव्य बुद्धि बहुत तेज थी और शील दादी जो मुंबई में थी वो ध्यान में जाते थे, तो शील दादी और मम्मा बैठकर उनको डायरेक्शन देते थे कि लक्ष्मी नारायण के साड़ी का क्या कलर हो, ब्लाउज का क्या कलर हो, कितने गहने पहनना है, कितनी उनके चेहरे पर चमक हो आदि आदि। क्योंकि क्या है कि जो आर्टिस्ट है
जी
ध्यान में नहीं जाता
जी,
और दादी जो ध्यान में जाती आर्टिस्ट नहीं
जी,
तो दोनों मिक्स करके करते थे, करके सतयुगी लक्ष्मी नारायण जैसा एग्जैक्ट चित्र तो नहीं बना, क्योंकि वहाँ की जो उनके चेहरे की चमक आदि होती थी यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकते थे
जी।
तो ऐसे भी होता था क्योंकि समझती अचल बहन है वो अकेली थी और धर्मशाला में
जी
वो लौकिक अलौकिक सेवा करती थी। तब बाबा ने मम्मा को भेजा वहाँ उसको रिफ्रेश कर
जी,
खास एक को रिफ्रेश करने मम्मा को भेजा
जी दीदी।
तो क्या था, ज्यादातर मम्मा बाबा बम्बई में आते थे या बड़े बड़े शहरों में जाते थे, मेनली बच्चों को रिफ्रेश करने और चेकअप करने
जी।
क्योंकि उन दिनों में दिसंबर जनवरी में मधुबन में कोई नहीं आते थे
जी,
तो इसलिए बम्बई वाले दिल्ली वाले मम्मा बाबा को कहते थे कि आप आओ, अपना बॉडी का चेकअप भी करा लो और हमें भी रिफ्रेश करो
जी।
तो इसलिए मम्मा बाबा आते रहते थे
जी। दीदी दीदी ने एक बार सुनाया था कि उन दिनों दिसंबर जनवरी में बहुत ठंडी पड़ती थी, इसलिए भी बाबा मम्मा चक्कर लगाने जाया करते थे दिल्ली बॉम्बे, तो ये दोनों सेवा हो जाती थी। और जैसे दीदी ने बताया कि मम्मा को बाबा अनेक स्थानों पर भेजते थे, न सिर्फ कुछ विघ्न को समाप्त करने बल्कि उन सब उस समय के भाई बहनों को रिफ्रेश करने। दीदी मम्मा के बारे में हम सब सुनते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत सारी यादगार है, जितनी भी देवियां हैं वो मम्मा की यादगार स्वरूप है। तो मम्मा जैसे महान योगिनी थी, तपस्वी थी, मम्मा की योग की स्थिति कैसी रहती थी दीदी, कैसे योग कराती थी, कैसे उनकी अवस्था योग युक्त रहती थी, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे दीदी।
मम्मा का नियम था सवेरे 2:30 बजे उठकर 5 बजे तक योग करना और बहुत पावरफुल योग
जी,
और जिनको सकाश की दरकार होती थी क्योंकि कई बांधेलियां थी उस समय
जी,
शुरू शुरू में बांधेलियां बहुत थी, तो मम्मा उनको सकाश देती थी। और जब भी फ्री होती थी, योग में बैठ जाते थे। यदि मम्मा की कहानी सुनो तो उनका योग इतना पावरफुल था कि जो भी आते थे वो बहुत प्रभावित हो जाते थे। अमृतसर में एक बार मम्मा थे और अमृतसर में काफी हंगामा हुआ
जी।
क्योंकि एक बांधेली माता थे, तो क्या हुआ कि कई लोग जिनकी बेटियां बहु पवित्र रहना चाहते थे वो सब मिलकर सेंटर पर सवेरे सवेरे 7 बजे के पहले आ गए। और बाबा को मालूम था कि हंगामा होने वाला था
जी।
तो मम्मा तो थी, बाबा ने जगदीश भाई को भी भेज दिया दिल्ली से अमृतसर कि आप भी जाकर मम्मा को मदद करना। तो करीब 100-125 का झुंड आया
जी।
तो जगदीश भाई नीचे गया और कहा अभी तो हमारा मुरली का टाइम है, आप मुरली के बाद मम्मा से मिलना
जी।
वो कहने मुझे हम लोगों को अब भी मिलना हूं
जी।
और दरवाजा ठोकते रहे, वाह शोर करते रहे। आखिर जगदीश भाई ने कहा ठीक है, आप में से 5-7 लोग हमारे साथ आओ, हम आपको मम्मा के पास ले जाओ। तो वो लोग ले उन्हों को ले गए। मम्मा ऊपर थी 2nd फ्लोर पर, वहाँ ले गए। तो मम्मा तो योग में बैठी थी
जी।
वो लोग भी सामने योग में बैठ गए। 5-7 मिनट योग किया, फिर मम्मा ने पूछा कैसे आए हो
जी।
कहा मम्मा कुछ नहीं कुछ नहीं। और नीचे जाकर अपने साथियों को कहते हैं इनकी मम्मा तो देवी है
जी।
ऐसे करके वापस लौट कर
जी जी जी
ऐसे जहां भी जाती थी
जी।
कई जो देवियों के भगत होते थे, सरस्वती के भगत होते थे, जहां मम्मा जाती थी उनको साक्षात्कार होता था। और बेंगलोर में टिकन दादी ने सेवा शुरू की और डिफिकल्ट थी
जी।
ओम शांति। तो शुरू शुरू में डिफिकल्टी थी क्योंकि एक तो भाषा का प्रॉब्लम
जी,
और शुरू में एक छोटे कमरे में दादी रहती थी, तो दादी को मदद करने लिए ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को भेजा
जी।
अभी दादी तो सोच में पड़ गई, मम्मा आती है उनको कहाँ ठहराएंगे, कहाँ प्रवचन करेंगे
जी।
परंतु दादी में भी भावना अच्छी थी, तो वो चल पड़ी बाजार में और कोई सेठ जाता था उसके पीछे गई
जी।
और उसको कहा कि आप सरस्वती देवी को जानते हो, तो कहता हाँ मैं तो उसका भगत हूँ
जी।
तो कहा वो आ रही है यहाँ, हमको मकान चाहिए और होल चाहिए। उसने कहा मेरी धर्मशाला भी अभी बनी है
जी,
रह सकती है और होल भी है। उसी समय कार में बिठा कर उनको ले गया और दिखाया, तो दादी तो बहुत खुश हो गई और मम्मा का प्रोग्राम रखा, प्रिंटिंग कराया कार्ड और प्रोग्राम रखा, और वो सेठ जब आए तो उनको सचमुच सरस्वती का साक्षात्कार हुआ, बहुत खुश हो गए
जी।
तो ऐसे समझो, मम्मा जहां भी जाती थी, कईयों को साक्षात्कार होता था मम्मा से
जी,
और बहुत प्रभावित होते हैं
जी। दीदी जी, ये बेंगलोर में हृदय पुष्पा दादी रहती थी दीदी, हृदय पुष्पा दादी, दादी चंद्रमणि की बड़ी बहन। उस समय की घटना प्रत्यक्ष उदाहरण दीदी सुना रही है, किस तरह से दादियों ने सेवा किया और मम्मा के प्रति लोगों को भावना बिठाते थे और उसी तरह से लोगों को साक्षात्कार हो जाते थे। तो इस तरह से सेवा आगे बढ़ती गई। दीदी एक और प्रश्न है, मुंबई में मम्मा बहुत लंबा समय रुकती थी, कैसी दिनचर्या होती थी? कुछ तो आपने सुनाया लेकिन थोड़ा और सुना दीजिए दीदी, सुबह से लेकर शाम तक मम्मा का क्या दिनचर्या होता था?
मम्मा शुरू में तो जैसे मैंने बताया लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाने में
जी
बिजी थे, तो सवेरे सवेरे वो मम्मा रहती थी रमेश भाई के देव छाया के फ्लैट में
जी,
और रमेश भाई उनको वाटरलू में ले आते थे। कभी कभी मम्मा बाबा को हैंगिंग गार्डन में ले जाते थे, लॉन्ग बुट, बाबा मोली ने बात करते हैं लॉन्ग बुट के। और एक दिन रमेश भाई ने एक एडवर्टाइज देखी, ऑटोमेटिकली कोको कोला के बॉटल से ड्रिंक
जी
ग्लास में आ जाता था, उनको तो बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मम्मा को पूछा, मम्मा ये आपने देखा एडवर्टाइजमेंट? मम्मा कहे नहीं, मैं तो बाबा की याद में मस्त थी
जी।
तो सवेरे सवेरे आती थी, क्योंकि बम्बई में ब्राह्मण बहुत दूर दूर रहते थे, जैसे हम लोग रहते थे कांदीवली मलाड़ बोरीवली आदि, फिर कोई रहते थे थाना मुलुन सायन, तो इसलिए क्लास मम्मा सर सवेरे एक बार कराते थे
जी,
और शाम को फिर घर में रहती थी। तो मम्मा के पास जब बीमार थी तब बाबा क्या करते थे, रोज की ताजी बुल्ले
जी
ईशुदादी शॉर्ट हैंड में लिखते थे, शांतामणि दादी ठीक करके लिखते थे, और फास्ट पोस्ट से जाते थे। तो उन दिनों में फास्ट पोस्ट के लिए क्या करना पड़ता था, माउंट आबू से, मतलब पांडव भवन में वो लोग रहते थे, नीचे स्टेशन पर मुंबई की ट्रेन के टाइम कोई पहुंच जाता था
जी,
और ट्रेन में पोस्ट दे देता था। तो दूसरे दिन सवेरे ट्रेन बम्बई पहुंच जाती थी, दिन में मुरली मिल जाती थी
जी।
तो मम्मा एक बार वो मुरली मिल पड़ती थी, दोबारा लिथो, उस समय मुरली लिथो करते थे
जी,
जो आते आते दो हफ्ता हो जाता था तो वो पढ़ती थी। और उन्हीं दिनों में ग्राइंडिंग मशीन जो फोर्सफुल होता है वो टेप रिकॉर्डर शुरू हुआ था
जी।
तो लंदन से मुरली भाई ने एक टेप रिकॉर्डर भेजा था, तो बाबा ने वो टेप रिकॉर्डर मम्मा को दिया और जो मुरली थी
जी
वो भेजते थे। तो इसरी से मम्मा कम से कम 3 बारी मुरली पढ़ती थी, मनन मंथन करती थी और धारण करती थी। तो इस कारण सभी मुरली सुनकर बहुत प्रभावित होते थे। जैसे जानकी दादी का क्लास सबको बहुत पसंद आता था, ऐसे मम्मा के ये क्लासेस भी सभी को बहुत अच्छी लगती थी।
जी दीदी,
तो मम्मा ऐसा मिसाल देती थी कि वो पॉइंट हमारी बुद्धि में बैठ जाते। मिसाल के तौर पर एक दिन उन्होंने कहा कि देखो, यदि कोई को रास्ते में उल्टी का ख्याल आएगा क्या करेगा? किनारे जाकर करेगा
जी।
यदि रास्ते के बीच में करेगा तो क्या होगा? जो भी आने जाने वाले हैं उनको थोड़ा
जी
नाक बंद करके जाना पड़ेगा, फिर वहाँ मक्खी बैठेंगी, फिर वो मक्खी किसी के खाने पर बैठेंगी
जी,
वो भी बीमार हो जाएगा। तो इसी रीत से आपको कोई भी बात पसंद नहीं है, वॉमिट करनी है, किसी को नहीं बता, सिर्फ डॉक्टर को बताते हैं ना, बीमारी डॉक्टर को बताएंगे तो अच्छी होंगी
जी।
तो इसलिए सीनियर सिस्टर को, बाबा को बताओ तो बाबा उनको करेक्शन देंगे, बाकी जिसको भी सुनाएंगे तो वो भी बीमार हो जाएगा
जी।
इसलिए इधर उधर बात नहीं करो। तो मम्मा की क्लासेस बहुत दिलचस्प होती थी और सभी दौड़ते दौड़ते इतने दूर से 1.5-2 घंटा सफर करके पहुंच जाते थे मुंबई में। बीच में क्या होता था, मम्मा ज्यादा रहे क्योंकि मम्मा की ट्रीटमेंट टाटा हॉस्पिटल में मुंबई में होती थी और रेडिएशन बीच बीच में होता था, तो फिर कभी कभी बीच में पूना भी होके आते थे
जी। दीदी
मतलब सेवा चालू रखी अंत तक
जी। दीदी तो इस तरह से सबके सामने वो सब सिनारा है, किस तरह से मम्मा की दिनचर्या होती थी, कैसे उन दिनों मम्मा अपने बाबा के बच्चों की पालना करती थी, वो बिल्कुल सामने दृश्य दीदी हम सबके सामने ला रहे हैं। दीदी एक जानने की जिज्ञासा है, आपके लिए व्यक्तिगत है दीदी, कि मम्मा तो माँ थी, देवी थी, और कहते हैं कई बार कि मम्मा और बाबा की लोग गोद लेते थे या भाकी पहनते थे, सिंधी शब्द है। आपने कभी मम्मा की गोद का अनुभव या गले लगने का अनुभव, चूंकि माँ थी ना दीदी, तो आपने अनुभव किया है दीदी?
मम्मा बाबा दोनों के गोद का अनुभव किया
जी।
तो यही फील होता था कि हम बच्चे हैं
जी
और बाबा मम्मा हमारे माँ बाप हैं
जी।
तो जैसे माँ का प्यार फील होता था
जी। दीदी बहुत सुंदर दीदी, इतना सुंदर तरीके से हम सबको अवगत करा रही है दीदी। आपने तो ये बता दिया व्यक्तिगत बातें क्या होती थी। अभी कुछ भाई का किसी का प्रश्न है दीदी, कि ज्ञान में आते ही कुछ संस्कार दब गए थे, अब वो कभी कभी वापस आ जाते हैं, सदा के लिए समाप्त तो हो जाए, उसकी कुछ युक्ति जानना चाहते हैं दीदी।
क्या है कि जो संस्कार है ना, उनको जड़ से खत्म करके जला देना
जी।
जैसे कोई मर जाता है ना
जी,
तो मुर्दे को एकदम जला कर खत्म कर देते हैं, नहीं तो कभी कभी मुर्दा खड़ा हो जाता है। तो इसी रीत से बाबा कहते हैं, संस्कार को जड़ से निकालकर जला दो। जलाना होता है योग अग्नि के द्वारा, तो इसलिए ये देखना है कि संस्कार वापस ना आए। तो मेन तो है देही अभिमानी बनना है, अटेंशन रखना है, अपनी चेकिंग करते रहना है और फुल स्टॉप। यदि संस्कार वापस आते हैं या ऐसे गलत ख्यालात आते हैं तो उसको सस्टेन नहीं करो
जी,
क्योंकि कई बार क्या हम करते हैं कि गलत ख्यालात आते हैं हम उसको मनन मंथन करते रहते हैं। आदत पड़ी है ना, गलत बातों को चलाते रहने के। तो इसलिए ये देखना है कि हमें उसको रिवाइज नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, उसको मंथन नहीं करना।
जी दीदी, बहुत अच्छी बात दीदी सुना रही है कि हम सबका अनेकों का अनुभव रहता है कि ज्ञान में आती कुछ संस्कार दब जाते हैं फिर वापस आते हैं, तो कैसे उन्हें हम सदा काल के लिए समाप्त करें। तो इतना सुंदर युक्ति दीदी ने बताया। दीदी आजकल एक और चलन हो गई है, कई बहनें जब फोन करती है तो बताती है, दीदियों की खास करके भाई बहनों प्रति एक छोटा कंप्लेन है दीदी, कि पहले जैसे भाई बहनें रोज क्लास में आते थे मुरली क्लास में, तो वो कोरोना काल के बाद से अब नियमित रूप से नहीं आते, क्योंकि वो घरों में बैठ करके टीवी के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मेल के माध्यम से मुरली सुनने के आदि हो गए हैं। अब कोरोना काल खत्म हो गया है तो भी क्लास में जो सुबह का महत्व है वो उतना महत्व नहीं देते जैसे पहले महत्व देते थे। आप सभी सहमत होंगे भाई बहने भी, पहले जैसे रेगुलर दौड़ दौड़ के क्लास में आते थे, ऐसे बहुत सारी दीदियों का प्रश्न आता है। रोज मुरली सुनना, क्लास में आना, इसका महत्व थोड़ा बताइए दीदी।
देखो घर में मुरली सुनते हैं वहाँ का वायुमंडल नहीं रहता
जी,
और नियम भी नहीं रहता
जी।
कभी टाइम पर सुनते हैं कभी बिजी हो जाते हैं
जी,
तो कहेंगे दिन में सुनेंगे, फिर कहेंगे रात को सुनेंगे और फिर रात को जुट के खाते खाते सुनते हैं
जी दीदी।
तो इसलिए क्लास में जो वायुमंडल है, जो संग है, आपको घर में नहीं मिलेगा
जी,
इसलिए क्लास में जाना जरूरी है, क्योंकि जरूरी ना होता तो बाबा इतने सेंटर क्यों शुरू करते
जी।
मुरली घर में दे देते थे या मुरली टीवी पर आजकल तो सुन लेते हैं या अपने मोबाइल में पढ़ लेते हैं। तो ये है सुस्ती
जी,
और सुस्ती से हमारी उन्नति नहीं होगी। जितना उमंग उल्लास क्लास में आएंगे, संग मिलेगा, वायुमंडल मिलेगा, वो घर में नहीं मिल सकता
जी। बहुत सुंदर दीदी, मुरली का कितना महत्व है, क्लास में आना कितना जरूरी है, मम्मा बाबा ने कैसे दीदियों को सिखाए। हम तो दीदी को देखते हैं प्रतिदिन मुरली क्लास में 15 मिनट पहले दीदी आ जाती है, और इतना जैसे एक प्रकार से दीदी कहती कि टीचर का रिकॉर्ड, भगवान का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। तो इसलिए हम सबको जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं या यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, ये दीदी का बहुत सुंदर संदेश सभी सुने कि सुबह की क्लास में आना आवश्यक है, सुबह मुरली क्लास में सेंटर पर आकर के मुरली सुनना आवश्यक है, कि उससे भगवान का वाइब्रेशन आपको मिलेगा, बाबा की वरदानी दृष्टि मिलेगी, न कि मोबाइल से और न टीवी से।
दीदी, एक भाई का किसी का प्रश्न है, मुझे पब्लिक कांटेक्ट में रहना पड़ता है, कभी कभी चाय पकौड़ा खाना पड़ जाता है। मेरी पत्नी ज्ञान में चलती है, वो बहुत डांटती है, घर में झगड़ा हो जाता है। वो बोलती है क्यों खाते हो, लेकिन मेरे को कभी कभी खाना पड़ जाता है, ऐसा कहना है दीदी।
देखो रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई
जी,
दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट
जी।
रमेश भाई का खुद का चार्टर्ड अकाउंट का बिजनेस था, ब्रिजमोहन भाई गवर्नमेंट में काम करते थे। तो रमेश भाई ने बाबा को पूछा कि मेरे ग्राहक आते हैं, मुझे उनको चाय पिलाना पड़ता है
जी,
और साथ में पीनी पड़ती है। बाबा ने कहा नहीं
जी,
चाय की भी ना बोली
जी।
तो रमेश भाई घर से चाय ले आते थे
जी
ऑफिस में, और ब्रिजमोहन भाई ऑफिसर थे, उससे बड़े ऑफिसर के अंडर काम करते थे। तो उनको कहा यदि तुम्हारा बड़ा ऑफिसर ऑफर करता है तो तुम ले लो, क्योंकि नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, तुम्हारी बढ़ती नहीं होंगी। तो इसलिए चाय पीने का भी बाबा ने मना किया
जी।
तो इसलिए पकोड़े खाने की तो बात ही छोड़ो
जी दीदी,
हाँ तो चाय पकोड़े नहीं खाने चाहिए। और नेचुरली उनकी पत्नी पक्की होंगे,
बहुत पक्की दीदी, मिली थी मेरे को,
नाराज हो जाती
है जी दीदी।
तो इसलिए पकोड़े तो जरूर नहीं खाने चाहिए, चाय चलो पी लिया तो भी बाबा की याद में अलग है
जी,
पकोड़े नहीं खाना।
तो जो भाई सुन रहे हैं, जिसने प्रश्न दिया है, वो समझ लें, वैसे तो बाबा की तरफ से चाय की भी छुट्टी है, लेकिन कभी कोई एकदम मजबूरी हो, आपको लोगों के बीच रह करके किसी को संतुष्ट करना हो, तो ये दृष्टि दे करके और बाबा की याद में चाय पी सकते हैं, वो भी कभी कभी। दीदी, आपको बाबा ने विदेश सेवा के लिए कैसे चुना, वो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं दीदी। कैसे 71 में जो 5 लोग यहाँ से विदेश सेवा के लिए गए थे, उसमें इतने हजारों भाई बहन थे भारत में, आपका चयन कैसे हुआ था दीदी?
1971 के जनवरी में
जी
दिल्ली में एक इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस थी
जी,
जिसमें हम सभी का भाषण था
जी,
और भाषण अंग्रेजी में था
जी।
तो भाषण के बाद उन्होंने निमंत्रण दिया कि न्यूयॉर्क में जुलाई में कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप जो भी आएंगे आपको रहने का खाने पीने का प्रबंध हम करेंगे
जी।
तो जब मैं मधुबन आई तो मैंने दादी से सहज ही पूछा कि दादी, प्रकाशपन
जी,
दादी विदेश यात्रा पर कौन जा रहे हैं? दादी ने पूछा तुम जाएंगी? हमने कहा मैं जा सकती हूँ
जी,
क्योंकि मेरे लौकिक पिता की इच्छा थी कि मैं मेडिसिन MBBS करके फर्दर स्टडी के लिए विदेश जाऊं
जी।
मतलब वो धनवान थे और जाना थे, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे गांव में सेवा करनी है, बड़ी डिग्री लेकर क्या करेंगे
जी,
इसलिए मैं गई नहीं। तो मैंने कहा मेरे पिताजी स्पॉन्सर करेंगे
जी।
तो हम जो 5 गए, मैं, शील दादी, रोजी बहन और रमेश भाई, 4 के हम लोगों ने अपने को स्पॉन्सर किया
जी।
और जगदीश भाई गए, उसको यज्ञ ने स्पॉन्सर किया कि उस समय वो सरेंडर हो गए थे, नौकरी नहीं करते थे। तो ये समझो पहली बार ही हुआ। फिर जब हम टूर करते थे लंदन में, सेवा शुरू की, उस समय ऑलरेडी 8-10 ब्राह्मण थे
जी।
तो जगदीश भाई ने कहा कि हम चक्कर लगाकर चले जाएं, ये ठीक नहीं
जी,
हमको यहाँ सेंटर कहाँ खोलना है। फिर हम लोग लंदन वालों के साथ बैठे और पूछा कि आप लोग किराया वगैरह करेंगे, कोई बहन आएंगी तो उनका खाना पीना रहना प्रबंध करेंगे
जी।
उन्होंने कहा हाँ जरूर करेंगे। तो इसलिए फिर उन्होंने मकान ढूंढना शुरू किया और अक्टूबर में उनको मकान मिल गया
जी।
तो उन्होंने दादी प्रकाशमणि को लिखा कि दादी हमें कोई टीचर भेजो। दादी कहती थी कि भाई जो भी अंग्रेजी भेजे हैं जानने वाली, सब आप लोग वहाँ हो तो आप में से कोई
जी
वापस लंदन जाए, क्योंकि हम लोगों ने राउंड द वर्ल्ड ट्रिप टिकट की थी कि यहाँ से लंदन, लंदन से अमेरिका, अमेरिका से एशिया और वापस। तो हम पांचों की मीटिंग हुई। शील बहन कहे मुझे तो जाना होगा, मेरी माँ बूढ़ी है, वो मैं नहीं जाऊंगी। तो उसकी आदत थी, नर्वस हो जाती थी तो कान झिलाती थी
जी जी।
रोजी बहन कहे मेरी माँ को भी किडनी का प्रॉब्लम है, मुझे भी जाना पड़ेगा। जगदीश भाई कहे मुझे भी मैगजीन का काम है, जरूर जाना पड़ेगा। रमेश भाई कहे मेरा भी बिजनेस है, मुझे भी जरूर जाना पड़ेगा
जी।
तो बाकी रही मैं
जी दीदी।
मैंने कहा ठीक है मैं वापस जाएंगी
जी।
तो मैं अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस थी, डिस्पेंसरी थी, वो एक बहन को छोड़ के गई थी कि भाई मैं भी 2-3 मास के बाद आएंगी
जी,
फिर शुरू करेंगे। तो वो बिचारी तो रास्ता ही देखती गई
जी।
मैं 8 मास के बाद आई, फिर वो फ्री हो गई
जी।
तब तक बाबा ने या दादी ने हमको प्रैक्टिस छोड़ने की मना की थी कि नहीं तुम डबल डॉक्टर हो, तुमको प्रैक्टिस करनी है
जी।
पर उसके बाद दादी ने कहा भले अभी आप छोड़ दो
जी,
क्योंकि लंदन वालों ने मांग की कि निर्मला यहाँ आ गई है, अनुभवी है
जी,
उसको ही भेजो
जी।
तो फिर वहाँ जाना पड़ा
जी। बहुत सुंदर दीदी आपने, हाँ दीदी हमारी बाबा की अनन्य रत्न, विदेश सेवा की पहली टीचर, विदेश सेवा की प्रारंभ से ही दीदी रही विदेशों में, और आज जो हम इतना विस्तार देख रहे हैं विदेशों में, ये दीदी की अथक परिश्रम, सेवा, त्याग, तपस्या का फल है। दीदी एक और प्रश्न है, मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है दीदी। बड़ी दादी कहा करती थी बाबा आपने हमारी मम्मा को कहाँ छिपाया है, कई बार कहती थी, ऐसी क्लास में भी बोलती थी बाबा आपने हमारी मम्मा को कहाँ छिपाया है। आपको क्या लगता है दीदी मम्मा कहाँ होगी, क्या पाठ बजा रही होगी, कुछ आभास होता है दीदी आपको?
नेचुरली एडवांस पार्टी में है मम्मा
जी,
और सत्युगी स्थापना में मदद करते हैं
जी।
बाकी कहाँ है। एक बारी बाबा ने अव्यक्त मुरली में इशारा दिया था
जी
कि वो नेपाल में है।
अच्छा,
बाकी एग्जैक्टली कहाँ है क्या है किसी को मालूम
जी। दीदी कभी योग में पूछेंगे बाबा से, दीदी आप तो हम लोग को बता देना कि कहाँ है इसमें। दीदी एक और प्रश्न है, दादी चंद्रमणि को बाबा पंजाब की शेर कहते थे, आपको बड़ी दादी ने भी आपको एक बार शेरनी कहा था, आपको शेरनी क्यों कहा था?
क्या था, मैं विदेश में अकेली ट्रैवल करती थी
जी,
ऑस्ट्रेलिया से जब चार पांच सेवा करके मैं निकल रही थी तो एक भाई ने जो ईस्ट अफ्रीका में था उसने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया तक गए हो, न्यूजीलैंड जरूर जाओ, फिजी जरूर जाओ, क्योंकि वहाँ
जी
बहुत इंडियन है, तो इसलिए मैं अकेली टूर कर रही थी। और नेचुरली है कि कभी ऊपर नीचे हो जाता है
जी,
तो कुछ डिफिकल्टी थी, मैंने दादी को पत्र लिखा कि मैं जहाँ रहती हूँ वो घरवाली ही क्लास में नहीं आती थी
जी,
तो दादी ने प्यार से लिखा, हाथी है झुंड में घूमते हैं, तुम शेरनी हो
जी,
अकेली घूमती हो
जी 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 जी। ताली बजा दीजिए दीदी के लिए, ऐसे दीदी अनेक वर्षों तक अकेली सेवा करती रही, अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी, तो सचमुच दीदी एक शिव शक्ति शेरनी स्वरूपा बन करके देश विदेश में सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी, ये हम सबका परम सौभाग्य है। ऐसे सुंदर अनुभव दीदी हमको अवगत करा रही है। दीदी एक छोटा सा प्रश्न और लास्ट में है, आपने अनेक वर्षों तक कोई ब्राह्मणी नहीं रखे थे, अकेली सुबह से लेकर शाम तक कपड़ा धुलाई करना, खाना बनाना, सेवा केंद्र संभालना, सेवा भी करना, कैसे मैनेज करती थी दीदी, अकेली कैसे कर लेती थी सब?
देखो बाबा जब डायरेक्शन देते हैं
जी,
शक्ति भी देते हैं
जी,
और उस समय मैं 37 की होंगी
जी,
तो यंग थी
जी,
तो नेचुरली है सब कुछ करना पड़ता था, घर की सफाई, शॉपिंग, खाना पकाना, स्पेशली लंदन में
जी
सब कुछ करना पड़ता था। अफ्रीका में घरों में रही तो अपना खाना भी पकाना पड़ता था, और लोग कहते थे अच्छा आप दाल चावल बनाते हो तो कुकर में हमारे लिए भी दाल चावल बना लो
जी जी जी,
आटा बना लो
हाँ।
हम आप आटा बनाएंगे
जी,
तो हम फिर
हाँ।
अपनी रोटी बना लेंगे मतलब उनको दुख तो होता था
जी,
क्योंकि दूसरे जो भी साधु संत आते थे हलवा पूरी मिठाइयाँ बनाते थे
जी,
और मैं अपने हाथ से दाल चावल सब्जी बनाती थी
जी,
दुख भी होता था
जी,
परंतु सहज भी कर लिया उन्होंने अपने लिए। तो बाबा ने हमको तैयार किया था, क्योंकि लौकिक घर में हमारे पास रसोई करने वाला कोई था
जी,
परंतु जब वो नहीं होता था
जी,
और जब माता को पीरियड वगैरह होता था
जी,
तो हम लोगों को खाना पकाना पड़ता था
जी जी,
लड़कियों को
जी,
तो हम लोग 13-14 व्यक्ति का खाना पड़ा पड़ा
जी।
और हमारे जो नौकर थे सफाई करने वाले, 10-10 रोटी
का,
तो गिनती करके रोटी बनानी पड़ती थी
जी।
और चावल भी दो प्रकार के होते थे उन दिनों में
जी।
उन्हों के लिए लाल चावल होता था, हम लोग सफेद चावल खाते थे
जी।
तो उस रीति से खाना पकाने का अभ्यास तो हो गया था
जी।
तो इसलिए कोई डिफिकल्टी नहीं है
जी। दीदी आपने तो सहज भाव से आप बता रहे हैं दीदी, लेकिन हम सब कल्पना ही कर सकते हैं कि इतने बड़े परिवार की, इतने बड़े घर के होते हुए भी किस तरह से आप मैनेज करती रही, किस तरह से अपना स्वयं सेवा स्वयं करती रही अनेक वर्षों तक। कोई ब्राह्मणी नहीं, कोई सेवाधारी नहीं, बल्कि सुबह से लेकर शाम तक पूरा सेवा केंद्र की सेवा आप करती रही, और उसका एक आध्यात्मिक बल आपके पास है दीदी। और दीदी के बारे में दो बातें और आप सबको सुना देना चाहता हूँ कि दीदी को बाबा ने एक बार, दादी ने कहा था कि ऐसी बच्ची अगर 21 कुमारी मिल जाए तो मैं चुटकी में स्वर्ग ला दूं। तो मैं दीदी से कई बार पूछता हूँ, दीदी वो 21 है कहाँ? एक तो आप हैं, लेकिन 20 कहाँ है? तो कभी आप लोग व्यक्तिगत टीचर बहने मिलेंगे तो पूछ सकते हैं। तो इस तरह से दीदी का बहुत सुंदर हम सबका अनुभव सुने। कुछ भाई या कुछ माताएं एक दो प्रश्न कोई पूछना चाहे, किसी के पास कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो योग करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो व्यक्तिगत या बाबा से मम्मा से संबंध, सामने आकर के पूछ सकते हैं। 5 मिनट टाइम है हमारे पास। हाँ 1 मिनट, वो आ रही पहले। माइक रखी थी क्या? जी
ओम शांति दीदी। दीदी मेरा ये प्रश्न है कि जो बाबा बोलते हैं कि जो इस बार हो गया है वो मतलब निश्चित है कि आगे कल्प में होगा, और वही हो चुका है, लेकिन जो मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ और मुझे रह रहे के उसके लिए पछतावा होता है, वो अगले कल्प में ना हो उसके लिए मैं क्या करूँ जो नहीं दोहरा सके हम?
दीदी ये कह रही है कि इस जन्म में कुछ गलती हो गई है और बाबा कहता है कि वो कल्प कल्प होगा, तो क्या ऐसा कुछ है जो अगले कल्प में ना हो, मैं उसको
ऐसा कुछ उपाय दीजिए?
ऐसा कुछ उपाय, ठीक है। हाँ ठीक है, रख दीजिए, बस अभी उत्तर देंगे दीदी।
जो रिपीट होने वाला है कल्प कल्प रिपीट होगा, आप कितना भी कोशिश करो हर कल्प रिपीट होगा।
जी जी जी, हाँ ठीक। एक प्रश्न बस लास्ट में।
ये प्रश्न नहीं है दीदी।
हाँ।
हमको गर्व लगता है जब दादा ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को भी हमने साकार में देखा नहीं, उनकी पालना में आप पली हुई है, हमारे साकार में हम आपको देख रहे, ये हमारे गर्व लग रहा है। बार बार बाबा मुरली में भी आपका नाम लेकर के हमको बहुत मोटिवेट करता है, जो भी करना है। तो दीदी डॉक्टर निर्मला को देखो, निर्मला जी को देखो बोल के बाबा ने बोलता है, तो बाबा के मुख में आपका नाम बहुत बार सुनकर बहुत रोमांच हुआ है, अभी भी मेरे को रोमांच हो रहा है, बहुत खुशी है।
बहुत अच्छा,
साकार में देखकर हमको मजा आ रहा है
जी। ये सबका अनुभव है, दीदी के नैनों से बाबा मम्मा को देखते हैं, बाबा दीदी के चेहरे से बाबा मम्मा झलक दिखाई देता है, सबका अनुभव है। और किसी को कुछ पूछना हो एकाद प्रश्न, नहीं तो बस योग करेंगे। बस एक बार पुनः सभी, अच्छा एक भाई आ रहे हैं लास्ट।
ओम शांति दीदी और भाई जी। बाबा बोलते हैं संगम जी को 28 वर्ष है बोलते हैं, तो तेरी मान ली इसमें कोई कम बेश मान लीजिए कि लगभग 86 बीत गया, लगभग 14 वर्ष बाकी, इसमें कुछ कम बेस भी हो सकता है परिवर्तन में कि क्लियर इसमें हो सकता है, यही पूछना चाहता हूँ।
दीदी इनका कहना है कि बाबा कहते हैं संगम युग 100 साल का है, ये कुछ कम ज्यादा हो सकता है दीदी कि 100 साल ही होगा क्या, ऐसा पूछना चाहते हैं।
ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है
जी
100 साल का, क्योंकि जो भी बाबा कहते हैं अप्रोक्सीमेटली
जी,
इसलिए हो सकता है कम ज्यादा
जी। ये बाबा हमेशा औसत बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, तो दीदी का कहना है ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है जी। बोलिए भैया।
ओम शांति दीदी, आपको देख के बहुत एनर्जी आ रहा था वातावरण के अनुसार, मगर बाहर जाने के बाद वो वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं करते, शायद लाइक ऑफिस का देखो नहीं तो घर में भी, मगर सब कुछ संभाल करना चाहिए। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए आपका विधि अच्छी तरह से कुछ आपका उपाय कुछ है?
दीदी इनका कहना है कि यहाँ तो वातावरण बहुत अच्छा है, आपको देख करके हमको योग ज्ञान सब सहज लगता है, बाहर का वातावरण इतना अच्छा नहीं रहता दीदी, बाहर हम कैसे अपनी स्थिति को अच्छा बना करके रखें। ठीक है भैया।
बाबा कहते हैं योग द्वारा अपनी स्थिति ऐसी बनाओ
जी
जो परिस्थिति का आपके ऊपर असर ना हो
जी,
आपका असर परिस्थिति पर हो। बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, देखो एक अगरबत्ती जलाओ
जी
कितना वातावरण बन जाता है
जी।
गुलाब का पौधा चाहे कितने भी कीचड़ के बीच में हो, कीचड़ा गंध फैलाता हो, पर गुलाब अपनी खुशबू देता रहता है। तो इसी रीत से हमें अपनी स्थिति ऐसी ऊंची बनानी है जो परिस्थिति पर विजय पा
जी, अपनी स्थिति को अच्छा बना करके। माता जी लास्ट बस, और कोई ना है अभी, बस समय का सीमा को ध्यान रखेंगे।
हमें 7 बजे क्लास खूब अच्छी लगती है दीदी, 9 बजे क्लास करती है तो फिर हमें ना मुरली घर सुन के नहीं मन नहीं कहता है।
माइक सामने रखो। हाँ बोलो।
हमें देखते हैं 7 बजे क्लास नहीं करती हमारी दीदी, 9 बजे करती, फिर हम घर में मुरली सुन लेता तो फिर 9 बजे जाने का मन नहीं करता
है। अच्छा ठीक है, रख दीजिए, बैठिए अभी। दीदी इनका कहना है कि इनके सेंटर की दीदी 9 बजे मुरली सुनाती है, तो हम सुबह कैसे जाएं, हो सकता है वहाँ का सिचुएशन ऐसा हो, दीदी बोल देगी सुबह 7 बजे मुरली सुना देगी। ठीक है, चलो आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद, और दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अपना कीमती समय निकाल करके। दीदी का स्वास्थ्य भी थोड़ा अभी ऊपर नीचे चल रहा था, उसके बावजूद भी हम सबके लिए इतना कीमती समय निकाल करके आई। सबके तरफ से, बाप दादा की तरफ से, आप सबके तरफ से दीदी का दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहें दीदी और तंदुरुस्त रहें, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। ओम शांति।